प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 462। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सुवसाहूणं, सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाती कर्मने प्रणमन करूं धर्म करता तीर्थ श्री महावीर ने वड़ी शेष तीर्थंकर ने सो सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तप वीर्या चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वळी मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने य नमस्करण करिए रीते गणधर ने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यने ये नाथि शिव प्राप्ति बने। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है, उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्युक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं, वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये छठी पुस्तक आज से प्रारंभ होती है, भाग 6 और पृष्ठ संख्या 1, यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। 6 नंबर की पुस्तक
या श्लोक 9वां रह गया लिखने का,
क्या
श्लोक 9
नहीं है, इतना ही है बस। पहले हम श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक से ही चालू होते हैं, यहाँ नया अधिकार शुरू हो रहा है ना। द्रव्य सामान्य विज्ञान निम्नम कृत्वेति मानसम् तद्विशेष परिज्ञान प्राग्वार क्रियते धुना। देखो यहाँ 3 नंबर के पृष्ठ पर गुजराती में ना, यहाँ से पढ़ते हवे श्लोक द्वारा नवा विषय नु। पहले द्रव्य सामान्य की बात थी, अब विशेष की बात होगी। मैंने द्रव्य विशेषना वर्णन नु सूचन करवामा आवे छे। द्रव्य सामान्य ने इन जनरल बात है द्रव्य की, और द्रव्य विशेष ने क्या कहेंगे? नहीं, द्रव्य विशेष जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य धर्म अधर्म आकाश, ये द्रव्यों के विशेष। एक तो सामान्य से द्रव्यों की चर्चा बताई, अब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य इसे अलग अलग बताएंगे, उसको कहेंगे द्रव्य विशेष। यानी द्रव्य में जो सामान्य विशेष है उसकी बात नहीं है, एक ही द्रव्य में सामान्य अंश विशेष अंश है उसकी बात नहीं है, द्रव्यों में सामान्य द्रव्य नहीं, द्रव्य इन जनरल, द्रव्य कहने से 6 द्रव्य आ गए, और विशेष द्रव्य कहने से वो जीव है क्या पुद्गल है, तो उसकी विशेषताएं बताएंगे। तो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ देखते हैं। ए रीते द्रव्य सामान्य ना ज्ञान थी मन ने गंभीर करीने, या लिखा ना द्रव्य सामान्य विज्ञान निम्नम कृत्वेति मानसम, यानी गंभीर करके हवे, यानी अब द्रव्य विशेषना परिज्ञान नो प्रारंभ करवामा, परिज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान, सर्वांगीण जो उसका ज्ञान, उसका यहाँ से प्रारंभ करने में आता है। ये गाथा के पहले हेडिंग देते हैं, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य टीका लिख रहे हैं, तो गाथा का जो विषय आने वाला, जो विषय अधिकार का, उसके लिए उन्होंने एक श्लोक बनाया यहाँ पर। आम श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत, प्रणीत ने उनके द्वारा बताया हुआ
कथित
श्री प्रवचन सार शास्त्रणी श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव विरचित तत्व दीपिका नामनी टीकामा गेय तत्व प्रज्ञापन ने विषय, यानी गेय तत्व प्रज्ञापन के उसमें विषय ने उसमें द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन समाप्त थयू। हवे द्रव्य विशेष नु प्रज्ञापन करे छे, प्रज्ञापन का अर्थ होता है कथन करते, उसका विशेष वर्णन करते, अर्थात द्रव्य विशेष ने, उसका अर्थ क्या है, द्रव्य ना भेदों ने जनावे छे। तेमा प्रथम द्रव्य ना जीव अजीवपना रूप विशेष ने नक्की करे छे, अर्थात द्रव्य ना जीव ने अजीव एवा बे भेदो दर्शावे छे। पहले में पहले 6 भेद नहीं बताए, 6 में कुछ जीव है और कुछ अजीव द्रव्य है, उसके बाद बताएंगे, फिर अजीव के भेद को उनके नाम बताएंगे। पहले हमको गाथा पढ़नी है, पहले पेज पर आना। पढ़ते यहाँ पर, दौवम जीवम अजीवम जीवो पुन छेदनो ओगमो पोगल दौवप्पमुहम अजेतनम हवदीय अजीवम द्रव्यम जीवो जीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः पुद्गलद्रव्यप्रमुखो अचेतनो भवति चाजीवः छेद्रव्यजीवजीवचितोपयोगमयते जीव छे पुद्गलप्रमुखजे छे अचेतन द्रव्यते अजीव छे। बहुत आसान है गाथा, क्या बताए इसमें, द्रव्य दो प्रकार के हैं, जीव और अजीव। उसमें से जीव का लक्षण क्या बताया, चेतना उपयोग, और अजीव में जिसमें पुद्गल मुख्य है, प्रधान बताया ना, पुद्गल द्रव्य प्रमुख है, वे अचेतन द्रव्य है और उनको अजीव द्रव्य कहेंगे। अजीव नाम का द्रव्य नहीं है, 5 द्रव्य अजीव है, चेतन नहीं है, अचेतन है। देखो अन्वयार्थ पढ़ते हैं, द्रव्यम यानी द्रव्य, जीव अजीव, जीव अने अजीव छे, यानी द्रव्य के दो प्रकार, जीव और अजीव। पुनः त्या चेतनोपयोगमय, चेतना उपयोग में, चेतना में तथा उपयोग में ते जीव छे, ते जीव है ने ते जीव छे, चो अने पुद्गल द्रव्य प्रमुख अचेतन, पुद्गल द्रव्यादिक आदि लिखा ना, जिसमें पुद्गल द्रव्य प्रमुख है, मुख्य है, तो उसमें आदि में सब आ गए बाकी, तो पुद्गल द्रव्यादिक अचेतन द्रव्यो ते अजीव भवती अजीव छे। जीव का लक्षण चेतना उपयोग में बताया, और बाकी अचेतन जो है, जिसमें चेतना नाम का वो लक्षण नहीं है, वो सारे अचेतन है, वो अजीव द्रव्य है। टीका, अब यहाँ अमृत चंद्राचार्य की टीका पहले पढ़ते हम। अहीं अयने आ विश्वमा, विश्व किसको कहेंगे, 6 द्रव्यों के समूह को। तो इस विश्व में द्रव्य एकत्वना कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य ने छोड़िया बिना जो क्या कहते हैं, एकत्व के कारणभूत ने द्रव्य कहने से उसमें सारे द्रव्य समा गए, वो क्या है, द्रव्यत्व सामान्य, यानी द्रव्य सामान्य से द्रव्य कहेंगे तो उसमें सभी द्रव्य, वो जीव है कि पुद्गल है उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ जो बात हो रही थी उत्पाद वे द्रव्य उत्तम सत, ये कौन से द्रव्य का लक्षण बताया, सभी का द्रव्य का लक्षण, उसको कहेंगे द्रव्य सामान्य। हाँ, यानी द्रव्य इन जनरल, भेद किए बिना द्रव्य में कोई भेद नहीं किया, द्रव्य के अंदर गुण पर्याय का भेद वो बात अलग है। यहाँ तो द्रव्य कहने, द्रव्य के लक्षण कहने से जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, हम सामान्य से वर्णन करते हैं, वो तो सभी द्रव्यों में लागू होता है। अब कहते वो जो द्रव्य सामान्य का लक्षण है वो छोड़े बिना, यानी प्रत्येक द्रव्य में द्रव्य के सामान्य गुण यानी उसका सामान्य लक्षण तो है ही है, हर एक का अपना विशेष लक्षण भी है। यहाँ क्या कह रहे कि आ विश्वमा द्रव्य एकत्वना कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य ने छोड़िया बिना, यानी द्रव्यत्व सामान्य के कारण वो सभी द्रव्यों में एकत्व है, एकत्व यानी उसमें सादृश्य है, समानता है, उसको छोड़े बिना तेमा रहेला, यानी द्रव्यों में रहने वाले विशेष लक्षणों ना सद्भाव ने लीधे, एक बीजा थी जुदा पाड़वामा आवता, क्या कहते, ये 127 नंबर की गाथा चल रही है, यहाँ पर 6 नंबर की पुस्तक लाई ना। हाँ, बहुत आसान विषय है, सिद्धांत प्रवेशिका शुरू हो रही है यहाँ पर। हाँ, बहुत दिन हो गए ना, भूल गए इसलिए। हाँ, तो इस विश्व में पहले तो अभी तक तो हमने द्रव्य सामान्य यानी गेय अधिकार है, तो गेय क्या है, तो सभी द्रव्य गेय है, तो गेय इन जनरल, जिसको द्रव्य इन जनरल की बात चली थी, जिसको द्रव्य सामान्य कहते, अब विशेष द्रव्य ने जीव है कि अजीव है, पुद्गल है कि धर्म है अधर्म है, उसकी बात अभी चलेगी। तो इस विश्व में द्रव्य सामान्य यानी द्रव्य के जो लक्षण है, क्या लक्षण हमने देखे थे, गुण पर्याय द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य उत्तम द्रव्य है, सत है, तो ये तो उस लक्षण को छोड़े बिना, यानी वो भी लक्षण है कि जिससे वो द्रव्य नक्की होता है, ये द्रव्य है नक्की होता है, परंतु वो कौन सा द्रव्य है नक्की होने के लिए उसके विशेष गुण काम आते हैं। तो ये वाक्य फिर पढ़ते टीका, अहीं आ विश्वमा द्रव्य एकत्वना कारणभूत द्रव्य सामान्य ने छोड़िया बिना, यानी द्रव्य सामान्य ने द्रव्य इन जनरल उसको छोड़ता नहीं है, वो जो द्रव्य के लक्षण है, द्रव्य इन जनरल के जो सामान्य से द्रव्य के जो जिसको हम सामान्य गुण कहेंगे या अन्य भी जो कुछ उसकी बात है, शॉर्ट में यहाँ वो बातें नहीं बताना चाहते, वो लक्षण बताना चाहते, उसको छोड़े बिना तेमा रहेला विशेष लक्षणों ना सद्भाव ने लीधे, अने हरेक द्रव्य में द्रव्य के सामान्य जो गुण है, सामान्य जो लक्षण है, जो द्रव्य को नक्की करते है, ये द्रव्य है जो नक्की होता है वो तो है ही है, परंतु हर एक में अपने अपने विशेष गुण विशेष लक्षण भी है, उसके द्वारा वो कौन सा द्रव्य है वो पहचाना जाता है, ये कह रहे हैं। तो विशेष लक्षणों ना सद्भाव ने लीधे एक बीजा थी जुदा पाड़वामा आवता, यानी वो एक दूसरे से भिन्न भिन्न कर सकते हैं, जुदे पड़ने नहीं, जुदे है परंतु लक्षण के द्वारा जुदे जुदे हम पहचान सकते हैं, जीवपणारूप अने अजीवपणारूप विशेष ने पामे छे। अभी इतना ही हमने लक्षण बताया कि जिसमें छह द्रव्यों में दो ही भेद पड़े, जीव और अजीव, अजीव में सारे बाकी आ गए, जो जीव ने वो सारे अजीव है, तो जीव का लक्षण यहाँ बताया, गाथा में बताया था, चेतना उपयोग उसका लक्षण बताया था। तो कहते एक दूसरे से भिन्न पड़ने के लिए वो जीवपणा और अजीवपणारूप दो विशेष उसमें पाए जाते हैं, त्या जीवनो आत्मद्रव्य ज एक भेद छे, जाति अपेक्षा जीव में कोई अन्य द्रव्य नहीं है, बस एक जीव जाति जिसको आत्मद्रव्य कहा वही जीव यानी चेतन द्रव्य है, अने अजीवना, अजीव नाम का कोई द्रव्य नहीं, अजीव के भेद है कितने, पांच, तो अजीवना पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य ने तथा आकाश द्रव्य, ए पांच भेद छे, ये जाति अपेक्षा ये जो पांच द्रव्य है वो सारे अजीव द्रव्य है। जीव नो विशेष लक्षण चेतना उपयोगमयपणु, उसका अर्थ क्या, चेतनामयपणु तथा उपयोगमयपणु छे। अने अजीवनु लक्षण एने विशेष, अजीवनु विशेष लक्षण अचेतनपणु छे। ये चेतनपना और वो अचेतनपना, चेतना उपयोग ने चेतना, चेतनामयपना और उपयोगमयपना, इसे दोनों को उन्होंने स्पष्ट किया है। और अजीव का लक्षण क्या है, विशेष लक्षण अचेतनपना। त्या जीवना स्वधर्मों में व्यापनारी हुआ थी, जीवना स्वरूपपणे प्रकाश थी, अविनाशिनी भगवती संवेदन संवदेन हुआ है, संवेदन रूप वो मात्रा जो वो के ऊपर चाहिए, संवेदन रूप चेतना वड़े। पूरा वाक्य पढ़ते फिर उसका पाठ लेके देखेंगे क्या कहते हैं। त्या जीवना स्वधर्मों में व्यापनारी, व्यापनारी हुआ थी, जीवना स्वरूपने प्रकाश थी, अविनाशिनी भगवती संवेदन रूप चेतना वड़े तथा चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग वड़े निष्पन्नपणु यानी रचायेलापणु बनेलापणु जेमा उतरेलू प्रतिभासे छे ते जीव छे। अब जीव कौन है उसके लिए इतनी बड़ा वाक्य बनाया उन्होंने, क्या कह रहे हैं, ये जो चेतना कैसी है तो सभी धर्मों में व्यापनारी है। बताया था ना पहले, चेतन है तो उसके सारे चेतन रूप है, इवन हमने वो कर्म चेतना ज्ञान चेतना उसमें भी देखा था। यहाँ क्या कहते हैं कि सभी द्रव्यों में व्यापनारी ऐसी ये चेतना है। और कैसी है, जीवना स्वरूपने प्रकाश थी, वो जीव का स्वरूप है, चेतना है वो जीव का स्वरूप है। और कैसे, अविनाशिनी उसका कभी नाश नहीं होता, भगवती और संवेदन रूप चेतना, संवेदन अपना स्वयं का वेदन करना उसको संवेदन कहते हैं, ऐसी जो चेतना है उसके द्वारा। तथा दूसरी क्या बात है, चेतना परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप, यानी चेतनामय और उपयोगमय से दो बातें की, तो चेतना कहने से वो तो स्वभाव है पर उसकी परिणति भी हो रही ना, हाँ उसको उपयोग कहा। तो कहते हैं कि चेतना परिणाम लक्षण, चेतना का जो परिणाम है, पहले तो चेतना लक्षण कहा था, चेतना वड़े कहा था, अब ये जो चेतना का जो परिणाम है यानी उसी को कहते हैं द्रव्य की परिणति, कि द्रव्य परिणति रूप उपयोग वड़े उसको उपयोग कहा। चेतना का जो परिणाम है, द्रव्य की जो परिणति है उसको उपयोग कहा। तो उसके द्वारा यानी चेतना के द्वारा और उपयोग के द्वारा जो रचेला है, निष्पन्नपनु यानी रचेलापनु बनेलापनु जेमा उतरेलू प्रतिभासे छे ते जीव छे, यानी चेतना और उसके परिणति यानी उपयोग, ये दोनों के द्वारा वो बना हुआ है ऐसा लगता है वो जीव है। अने जेमा उपयोगनी साथे रहनारी यथोक्त लक्षण वाली चेतनानो अभाव हुआ थी, बाहर तेमज अंदर अचेतनपणु उतरेलू प्रतिभासे छे ते अजीव छे। क्या कहते हैं, और उपयोग के साथ रहने वाली क्या है, चेतना, वो ना अंदर है ना बाहर है, ऐसे जो द्रव्य है वो अचेतन द्रव्य है, अजीव है। अब ये जो टीका है उसी का भावार्थ सरल शब्दों में समझाते हैं। द्रव्यपणा रूप सामान्यनी अपेक्षाएं द्रव्यों में एकपणु छे। कौन कौन से द्रव्यों में एकपना है उमाबेन, छह द्रव्यों में, क्योंकि सामान्य की अपेक्षा छह द्रव्यों में समानता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, छह द्रव्यों में एकपना है। तो पण फिर भी यानी ऐसे एकपना है फिर भी विशेष लक्षणों की अपेक्षा है तेमना जीव ने अजीव एवा भे भेद छे। बिल्कुल सिंपल, सिंपलेस्ट उन्होंने पहले में पहले जीव और अजीव ऐसे दो भेद किए। आपको याद होगा द्रव्य संग्रह में भी पहली गाथा ऐसी है, जीवम अजीवम इसे करके, हाँ तो वहां पर भी मूल में दो भेद उठाए थे।
अब ये दो भेद बताए। जे द्रव्य भगवती चेतना वड़े अने चेतना ना परिणाम स्वरूप उपयोग वड़े, ये चेतना स्वभाव है उसका और उसका परिणाम स्वरूप उपयोग है, उसके द्वारा रचायल छे ते जीव छे, उसके द्वारा जो रचा हुआ है वो जीव है। अने जे द्रव्य चेतना रहित होवाथी अचेतन छे ते अजीव छे। जीवनो एकज भेद छे, अजीवना पांच भेद छे, पांच प्रकार के अजीव द्रव्य है। आ बधानो विस्तार आगळ आवशे। मैंने बताया ना, ये सब सिद्धांत प्रवेशिका ही शुरू है अभी यहाँ से। अब हमको देखनी है जैसेनाचार्य की टीका, पेज नंबर 2 पर। अभी यहाँ तो सभी सेम पेज है ना, 2 नंबर के पृष्ठ पर। हाँ, संस्कृत एवं एक सूत्रेण पंचम स्थलम गतम, यानी इस तरह से एक सूत्र के द्वारा पांचवा स्थल गया। इति सामान्य गेय अधिकार मध्य स्थल पंचकेन भेद भावना गता, यानी सामान्य गेय अधिकार में पांच स्थलों के द्वारा वो भेद भावना जो अधिकार अभी वो गया। इति उक्त प्रकारेण तम्मा तस्नमायम इत्यादि पंचत्रिंशत् सूत्रैः, यानी वो जो गाथा का अधिकार की जो शुरुआत हुई थी तम्मा तस्नमायम करके इत्यादि पंचत्रिंशत् सूत्रैः,
35
सूत्रों के द्वारा सामान्य गेयाधिकार व्याख्यानम समाप्तम। सामान्य गेय अधिकार व्याख्यान यहाँ समाप्त हुआ। इत यानी इसके ऊपर अभी, इत ऊर्ध्वम यानी इसके पश्चात 21 गाथा भी, 19 गाथाओं के द्वारा जीव अजीव द्रव्यादि विवरण रूपेण विशेष गेय व्याख्यानम करोति। ये गेय अधिकार चल रहे ना, अभी तक सामान्य गेय अधिकार हुआ, अब विशेष गेय अधिकार चलेगा 19 गाथाओं के द्वारा। यानी क्या गया और क्या आने वाला है उसकी चर्चा हमेशा जैसे करते हैं, ये तो विशेषता है जैसेनाचार्य के। तत्र अष्टस्थलानी भवंती, वहाँ 8 स्थल है, यानी 8 अलग अलग उसके छोटे छोटे चैप्टर्स कहेंगे हम। तेषु आदौ जीव अजीवत्व कथनेन प्रथम गाथा, उनमें से शुरुआत में जीव अजीवत्व कथन की मुख्यता से या कथन के द्वारा प्रथम गाथा होती है। लोकालोकत्व कथनेन द्वितीय, लोक और अलोक के कथन क्या द्वितीय गाथा में उसका कथन है। सक्रिय निक्रियत्व व्याख्यान तृतीय चेती, सक्रिय और निक्रिय द्रव्यत्व की यानी उसके उसकी अपेक्षा से तीसरी गाथा है। दवम जीवम अजीवम इत्यादि गाथा त्रयेण प्रथम स्थलम, यानी ये जो 3 गाथाएं हैं पहली दूसरी तीसरी इत्या के द्वारा पहला स्थल हो जाता है। तदनंतरम उसके पश्चात ज्ञानादि विशेष गुणानाम स्वरूप कथनेन लिंगे हिं जेहिं इत्यादि गाथाद्वयेन द्वितीय स्थलम, यानी ज्ञानादि विशेष गुण, पहले तो द्रव्य बताए अलग अलग उसके भेद करके, अब एक एक द्रव्य के विशेष गुण भी बताएंगे, तो ज्ञानादि विशेष गुणों के स्वरूप के कथन की अपेक्षा से 2 गाथाओं के द्वारा दूसरा स्थल आने वाला है। अथ अनंतर उसके पश्चात स्वकीय स्वकीय विशेष गुण उपलक्षित द्रव्याणाम निर्णयार्थम वर्ण रस इत्यादि गाथा त्रयेण तृतीय स्थलम, क्या कहते हैं स्वकीय स्वकीय ने अपने अपने विशेष गुण उपलक्षित द्रव्याणाम, उपलक्षित होना है उसके लक्षण के द्वारा वो द्रव्य उपलक्षित होता है, यानी द्रव्य पहचानने में आता है बताया जाता है। तो अपने अपने विशेष गुणों से उपलक्षित ऐसे द्रव्याओं के निर्णय के लिए वर्ण रस इत्यादि गाथा 3 गाथाओं के द्वारा तीसरा स्थल आएगा। अथ पंचास्तिकाय कथन मुख्यत्वेन, उसके बाद पंचास्तिकाय का कथन है, अस्तिकाय 5 अस्तिकाय द्रव्यों का कथन होंगे। जीवा पुगलकाया इत्यादि गाथा द्वयेन चतुर्थ स्थल, यानी वो 2 गाथाओं के द्वारा चौथा स्थल आएगा। अतः परम उसके पश्चात द्रव्याणाम लोकाकाशम आधारम इति कथनेन प्रथमा, यानी द्रव्यों के लोकाकाश का आधार है ऐसे कथन से पहली गाथा। यदेव आकाश द्रव्यस्य प्रदेश लक्षणम तदेव शेषाणाम इति कथन रूपेण द्वितीया, यानी जैसे आकाश द्रव्य का प्रदेश लक्षण है ऐसे ही अन्य द्रव्यों का भी प्रदेश लक्षण है, क्योंकि अस्थि कहाँ है ना सारे, उसमें प्रदेश है। इस कथन से द्वितीय चेती लोगालोगेषु इत्यादि सूत्र द्वयेन पंचम शतम, यानी लोकालोक में इत्यादि दो सूत्रों के द्वारा पांचवा स्थल आने वाला है। तदनंतर उसके पश्चात काल द्रव्यस्य अप्रदेशत्व स्थापन रूपेण, देखो ये जो पहले जो भेद किए ना, कैसे जीव अजीव ऐसे भेद किए, लोक अलोक भेद बताए, सक्रिय निकृत ऐसे भेद बताए, उसके बाद अस्थिकाय और अप्रदेशी यानी प्रदेशी और अप्रदेशी ऐसे भेद किए, ये अलग अलग अपेक्षाओं से भेद करते जा रहे। इसलिए है तो छह द्रव्य, पर काल द्रव्य को अप्रदेशी कहा, पुद्गल को भी अस्थिकाय में लिया क्योंकि वो तो जुड़कर यानी बंध होता है ना, उसका स्कंद बनते हैं, इसलिए उसको अस्थिकाय में लिया था। उन काल द्रव्य को अप्रदेशी कहते हैं, कायत्व नहीं है उसमें। स्थापन रूपेण प्रथमा यानी पहली गाथा, समय रूप पर्याय काल, कालानुरूप द्रव्य काल। समय रूप है वो पर्याय काल है, काल की पर्याय है, और कालानु जो है वो द्रव्य काल है, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय कैसी होगी, है ना। समय जो हम समय 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 गिनते हैं वो तो काल द्रव्य का परिणमन है, वो उसके पर्याय है, और परंतु द्रव्य तो मेरा एक प्रश्न है, समय ज्यादा है कि काल ज्यादा है? नंबर समय कितने और द्रव्य कितने हैं बोलो, काल द्रव्य कितने हैं और काल के समय कितने हैं? हाँ टाइम पास करते, हाँ हाँ लोक प्रमाण संख्या और समय, हाँ अनादि अनंत से सारे समय, भूत भविष्य वर्तमान सब मिलकर वो काल द्रव्य की पर्याय है, और कालाणु है वो द्रव्य है। इस कथन रूप से द्वितीय चेती समोदु अपदेशो इत्यादि गाथा द्वयेन षष्ठ स्थलम, यानी वो काल द्रव्य के बारे में जो कथन है और उसके पर्याय के बारे में, तो दो गाथाओं के द्वारा छठा स्थल आता है। अथ प्रदेश लक्षण कथनेन, उसके बाद प्रदेश का लक्षण बताएंगे पहली गाथा में। तिर्यक प्रचय ऊर्ध्व प्रचय स्वरूप कथनेन द्वितीय चेती, उसमें तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय, वो आयत सामान्य आड़ा ऊर्ध्व प्रचय में आने वाला, काल की अपेक्षा ऊर्ध्व प्रचय, जैसे द्रव्य कैसा फैला हुआ है, तिर्यक प्रचय ने अनंत गुणों का समूह है और पर्याय के बाद एक होती है, उसको ऊर्ध्व प्रचय कहेंगे। तो तिर्यक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय स्वरूप कथनेन द्वितीय चेती आगासमनुनिविट्ठम इत्यादि सूत्र द्वयेन सप्तस्थलम, यानी वो सूत्र का एक दो शब्द लेकर उन्होंने इत्यादि सूत्र बताया है, वो दो सूत्रों के द्वारा सातवां स्थल आता है। तदनंतरम उसके पश्चात कालानुरूप द्रव्य काल स्थापन रूपेण उपादोपद्धंसो इत्यादि गाथात्रयेन अष्टम स्थलम इति, अनेक कालानुरूप द्रव्य काल की स्थापना रूप से वहां तीन गाथा आने वाली है, क्योंकि एक इतना बताने की क्या आवश्यक है, क्योंकि श्वेतांबर मत में तो काल द्रव्य को मानते ही नहीं, व्यवहार काल को ही मानते हैं, हाँ पांच ही द्रव्य मानते हैं।
नहीं समझे, ऐसा है कि वो व्यवहार काल को मानते हैं, निश्चय काल को नहीं मानते, लेकिन निश्चय काल के बिना व्यवहार काल
निश्चय बिना कहाँ से आया, द्रव्य के बिना पर्याय कहाँ से आई, ये है ना।
अभी क्या है, नए की बात उनमें शायद नहीं होगी इसलिए वो नहीं जानते, तो पांच ही द्रव्य मानते हैं, छठा तो व्यवहार है बोले। तो जिनेन्द्र परमात्मा ने छह द्रव्यों की बात की है, उसके विरुद्ध मान्यता है, वो कैसा सम्यक को प्राप्त करेगा?
देखो अब यहाँ के इत्यादि गाथा त्रयेण अष्टम स्थलम इति, वो आठवां स्थल गया। विशेष गेयाधिकारे समुदाय पातनिका, ये आने वाला जो विशेष गेय अधिकार है वो साधारण उसका जिसको कहेंगे इन जनरल उसकी पीठिका बताइए क्या क्या आने वाला है, कितने स्थलों में क्या क्या होता है, कौन सी गाथाओं में क्या आने, यानी आने वाले विषय की सूचनी का रूप ये सब यहाँ बताया। तद यथा अब ये जो हमने गाथा पढ़ी उसका अर्थ करते हैं। अथ जीव अजीव लक्षणम आवेदयति, जीव और अजीव का लक्षण बताते हैं। दव्यम जीवम अजीवम, द्रव्यम जीव अजीव लक्षणम भवति, अने द्रव्य जीव और अजीव ऐसे दो लक्षण वाले होते हैं। जीवो पुनः चेतनो, जीव पुनः चेतन, यानी जीव कैसा है तो चेतन है। स्वतः सिद्धया बहिरंग कारण निरपेक्षया बहिरअंतश्च प्रकाशमानया नित्य रूपया निश्चयेन परम शुद्ध चेतनया, यानी जीव कैसा है चेतन है। क्यों, किसके द्वारा चेतन है, जो स्वतः सिद्ध है, बहिरंग कारण से निरपेक्ष है, अंतर और बाहर में प्रकाशमान है, नित्य रूप है और निश्चय से परम शुद्ध ऐसे जो चेतन है उसके द्वारा जीव चेतन है। व्यवहारेन पुनः अशुद्ध चेतनया च युक्तत्वात् चेतनो भवति, और व्यवहार से अशुद्ध चेतन के द्वारा युक्त होने से उसको चेतन कहते हैं। पुनरपि किम विशिष्ट है, और कैसा है वो, उजोगमो उपयोगमय अखंड एक प्रतिभासमयेन सर्व विशुद्धेन केवल ज्ञान दर्शन लक्षणेन अर्थ ग्रहण व्यापार रूपेण निश्चय नयेन इत्थंभूत शुद्धोपयोगेन व्यवहारेन पुनः मति ज्ञानादि अशुद्धोपयोगेन च निवृत्तत्वात् यानी निष्पन्नत्वात् उपयोगमयः। ये जीव उपयोगमयी क्यों कहने में आता है, फिर पढ़ते कि पहले निश्चय से बता रहे हैं और फिर व्यवहार से बताए। तो कहते अखंड एक प्रतिभासमयेन, वो कैसा है तो अखंड एक प्रतिभासमय है, सर्व विशुद्ध है, केवल ज्ञान दर्शन लक्षण है और अर्थ ग्रहण व्यापार रूप जो निश्चय ने से ऐसे जो शुद्ध उपयोग से वो कैसा है उपयोगमयी है, और व्यवहार से मति ज्ञानादि, मति ज्ञानादि क्या कहा उसको, अशुद्ध उपयोग कहा। अशुद्ध क्यों, क्योंकि अभी तो अपूर्ण है ना, केवल ज्ञान जैसा परिपूर्ण नहीं है इसलिए उसको अशुद्ध कहा। उसके द्वारा निवृत्तत्वात् यानी उसके द्वारा निष्पन्न होने से जीव कैसा है तो उपयोगमय है। पुद्गल द्रव्य प्रमुखम अजेदनम हवदि अजीवम, पुद्गल द्रव्य प्रमुखम चेतनम भवति अजीव द्रव्यम। चेतनम क्यों, अचेतनम चाहिए, प्रमुखा होना चाहिए।
एक मिनट, प्रमुखम लेंगे तो अचेतन हो जाते।
अभी नंबर कितना है गाथा का,
127
ना, एक सेकंड, 120 तक। पुद्गल द्रव्य मोहम अचेतनम भवति अजीव, पुद्गल द्रव्य प्रमुखम अचेतनम, प्रमुख चेतनम लिखा है ना, म पूरा म डालो बीच में,
अनुस्वार देंगे तो
ना ना ना, ओ कैसे आएगा, अनुस्वार डालेंगे तो नहीं मिलेगा, अम भी चाहिए और म भी, अ भी चाहिए, तो पूरा म लाखनो, ख के बाद नीचे से दूसरी लाइन, द्रव्य प्रमुख लिखा है ना, द्रव्य प्रमुख चेतनम लिखा है तो द्रव्य प्रमुखम अचेतनम चाहिए, तो पूरा म डालो, आधा म डालेंगे तो पुद्गल को चेतन कहना पड़ेगा, तो अचेतन का अ और प्रमुखम का आधा म मिलकर पूरा एक म वहां डालना है। क्या कहते फिर पढ़ते, ऊपर प्राकृत में कैसे लिखा था, पुद्गल द्रव्य प्रमुखम यानी पुद्गल द्रव्य प्रमुखम अचेतनम है ना, ऐसा ही नीचे भी अचेतन होना चाहिए था, तो पुद्गल द्रव्य प्रमुखम अचेतनम भवति अजीव द्रव्यम, यानी पुद्गल द्रव्य जिसमें आदि प्रमुख है ने आदि, पुद्गल द्रव्य आदि जो है वो अचेतन है, वो सारे अजीव द्रव्य है। वो बराबर क्या है? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल संज्ञम द्रव्य पंचकम पूर्वोक्त लक्षण चेतनाया उपयोगस्य च अभावात अजीवम अचेतनम भवति इत्यर्थः। क्या कहते हैं? उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल संज्ञम यानी नाम के, संज्ञा यानी नाम, तो जिनके ये नाम है ऐसे द्रव्य पंचकम पांच द्रव्य है वे क्या है? पूर्वोक्त लक्षण चेतनाया उपयोगस्य च अभावात। पूर्वोक्त लक्षण जो चेतना का अभाव है और उपयोग का लक्षण का अभाव है इसलिए वो अजीव है अचेतन है ऐसा उसका अर्थ होता है। ये दोनों टीकाएं हो गई।
आप जब संस्कृत उसकी संधि छोड़ छोड़ कर यानी उकल कर पढ़ती है तो बहुत आसान लगता है।
आसानी है नहीं
और ऐसा देखे जाए तो पता ही नहीं लगता।
इसलिए हमें ज्ञान दर्शन वो स्वभाव चेतना ने स्वभाव लिया और चेतना की परिणति ने उपयोग लिया उसको उपयोग कहा। काल द्रव्य समय है, देखो समय नाम की कोई चीज नहीं है ना वहां पर, काल द्रव्य की पर्याय है। हाँ तो काल द्रव्य की पर्याय कहाँ होगी? काल को छोड़कर होगी क्या? द्रव्य को छोड़कर नहीं होगी, पर यहाँ वो पर्याय बीत रही है तो उसमें तो अन्य द्रव्यों का परिणमन अपने से हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि उसी प्रदेश में काल होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रश्न उठता है ना आलोक आकाश में कोई काल द्रव्य नहीं है तो उसके लिए कौन निमित्त है? पर आकाश पूरा अखंड द्रव्य है।
देखो इसको
हाँ
उसका उदाहरण देके समझाते हैं। ये छापा पेपर रहता है ना, क्या बोलते हैं आप लोग,
न्यूज़पेपर,
उसका एक कॉर्नर पकड़ने का और उसको खींचने का कॉर्नर को, तो क्या होता है? अक्का पेपर खींचा जाता है। इसका अर्थ क्या है? ये काल द्रव्य वहां नहीं है लेकिन निमित्त रूप से वो उसको परिणमन में हेतु है।
ये आकाश नाम का अखंड द्रव्य है, उसके कुछ भाग में तो काल द्रव्य है तो पूरा आकाश द्रव्य परिणाम मिल रहा। वो द्रव्य संग्रह में ऐसा प्रश्न पूछा गया था तो ऐसा कहते ऐसे पकड़ कर हम ऐसे से हिलाते हैं तो पूरा हिलता है, वैसे ही वहां पर लेना। देखो भावार्थ अभी पढ़ेंगे हम, ये हो गया ना? नहीं
हाँ। चार पेज
अभी अभी हमको प्रवचन लेना है। हाँ भावार्थ तो हो गया था। हाँ श्लोक का भी सब चौथे नंबर के पृष्ठ पर प्रवचन सार श्लोक नौवा। अब श्लोक द्वारा नवीन विषय, नवीन विषय ने द्रव्य की विशेषता के प्रकार उसके वर्णन को सूचित किया जाता है, क्योंकि गाथा शुरू होने के पहले उसका हेडिंग रूप से उन्होंने श्लोक बनाया है। श्लोक अभी हमने पढ़ा था उसका अर्थ देखते हैं। इस प्रकार द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य यानी विशेष के छह प्रकार के बिना का सामान्य द्रव्य, सब द्रव्य, द्रव्य में से कोई छह द्रव्य में नहीं है ऐसा है। इन विषयों में क्या है तो छह द्रव्य में सब कुछ आ गया उसमें, तो द्रव्य कहने से सब कुछ सभी द्रव्य है, उसके भेद नहीं है, भेदों का नहीं है, जीव है कि पुद्गल है उसकी चर्चा नहीं, उसको कहेंगे द्रव्य सामान्य। जिसको हम सत कहने से सब कुछ आ गए ना उसके अंदर ऐसा सब द्रव्य, उस द्रव्य सामान्य के ज्ञान से मन को गंभीर करके, यानी पहले में पहले द्रव्य सामान्य का स्वरूप हमने निश्चित किया है। मूल पाठ तो यह है कि विज्ञान निम्नम, विज्ञान निम्नम विज्ञान में ढला हुआ मुड़ा हुआ है इसलिए गंभीर करके ऐसा उसका अर्थ किया। द्रव्य सामान्य के ज्ञान से, विज्ञान शब्द है ना पाठ में, मन को निम्नम, निम्नम अर्थात गंभीर करके, मन को द्रव्य सामान्य के ज्ञान में झुकाकर अंतर्मुख करके अब द्रव्य विशेष के परिज्ञान का प्रारंभ किया जाता है। पहले द्रव्य इन जनरल जिसको कहेंगे, द्रव्य सामान्य का स्वरूप विस्तार से बताया है, अभी उसमें एक एक द्रव्य का विशेष लक्षण बताएंगे अर्थात द्रव्य के जो भिन्न भिन्न भेद है उसे कहेंगे। द्रव्य सामान्य की व्याख्या तो कही लेकिन भिन्न भिन्न छह द्रव्य की व्याख्या कहेंगे। द्रव्य विशेष के परिज्ञान यानी विस्तार पूर्वक ज्ञान, परिज्ञान है ना, परिया ने समस्त प्रकार से वो प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव, इसमें दोनों में श्रीमद् शब्द तो आता है, भगवान को भी श्रीमद् कहते हैं, भगवान अरहंत कुनकुंदाचार्य श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव श्रीमद् टीका में आता है, श्री अरहंत श्रीमद् अरहंत भगवान श्रीमद् स्वरूप की लक्ष्मी वाले, उसी प्रकार यहाँ कहते हैं श्रीमद् भगवत कुनकुंदाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद् अमृतचंद्राचार्य देव विरचित, विरचित ने उनके द्वारा रचित
विशेष
तत्व प्रदीपिका, तत्व दीपिका नाम की टीका में गेय तत्व प्रज्ञापन में द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन समाप्त हुआ, सामान्य द्रव्य की व्याख्या कही। अब यानी क्या हुआ उसकी चर्चा है, अब क्या कहेंगे, अब द्रव्य विशेष का प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात द्रव्य विशेषों को, द्रव्य के भेदों को, द्रव्य कितने प्रकार के हैं उनके भेदों को बतलाते हैं। उसमें प्रथम द्रव्य के जीव अजीव पने रूप विशेष को निश्चित करते हैं, एक एक अलग अपेक्षाओं के द्वारा किसी लक्षण के द्वारा द्रव्यों के भेद बताएंगे। पहले सामान्य द्रव्य कहा था, अब जीव और अजीव ऐसे भेद किए, जीव एक और अजीव के पांच, ऐसे छह द्रव्य हुए, अर्थात द्रव्य के जीव और अजीव ऐसे दो भेद बतलाते हैं। गाथा तो हमने पढ़ी थी, अब नीचे पढ़ते हैं। भगवान के ज्ञान में छह द्रव्य देखे गए हैं, सामान्य द्रव्य की व्याख्या हो गई, छह द्रव्य है और ज्ञान की पर्याय का धर्म इतना है, द्रव्य का स्वभाव तो अलौकिक है लेकिन ज्ञान की पर्याय का स्वभाव छह द्रव्य को जानना है, तब वह पर्याय पूर्ण होती है। द्रव्य तो पूर्ण है भगवान आत्मा, उसकी पर्याय छह द्रव्य को जाने उतनी ताकत वाली वह पर्याय पूर्ण है। समझ में आया, ये ज्ञान की पर्याय पूर्ण कब कहेंगे, वो छह द्रव्यों को जाने की ताकत है उतनी वो हो जाए उसको पूर्ण कहेंगे। स्वद्रव्य के ज्ञान पूर्वक परद्रव्य को जाने,
मेरा एक प्रश्न,
हाँ
अभी भी हम छह द्रव्य जानते हैं ना,
हाँ
तो क्या हम परिपूर्ण हो गए?
वो छह द्रव्य आपने प्रत्यक्ष नहीं जाने हैं, और छह द्रव्य में स्वद्रव्य को कहाँ जाना, तो छह द्रव्य कहाँ जाने,
नहीं नाम तो जानते हैं ना,
नाम जानने से वो शास्त्र का ज्ञान हुआ, छह द्रव्यों का नहीं। क्या कहते हैं, स्वद्रव्य के ज्ञान पूर्वक ये कंडीशन है, तो हमने परद्रव्य के नाम को रख लिया, बस इतना ही हो गया है ना। स्वद्रव्य के ज्ञान पूर्वक परद्रव्य को जाने ऐसी पर्याय की ताकत है, परद्रव्य को छुए बिना अपने में रहकर, ज्ञान की पर्याय ज्ञानमय को छोड़कर कभी बाहर कहीं जाती ही नहीं है, वो ज्ञानमय ही रहते हुए उसकी ताकत क्या है, सबको जाने ही ऐसी उसकी ताकत है, उसका स्वरूप ही ऐसा है। अपनी पर्याय द्रव्य को छुए बिना, अपनी पर्याय दूसरे द्रव्य को छुए बिना, अपनी पर्याय में उसका ज्ञान होता है, ऐसी बात बहुत सूक्ष्म है भाई, यानी पर्याय की ताकत कितनी है। तो ये द्रव्य में तो ये तो ऐसा तो सतत ऐसी पर्याय निकलती रहे, ऐसा तो द्रव्य का स्वरूप है, पर्याय की ताकत इतनी है तो वहां द्रव्य की तो क्या कहे, इसी बात है। ये पहले प्रवचन सार में भी आया था ना, वो केवल ज्ञान का स्वरूप निश्चित किया था, कितनी विविधता से उसका वर्णन किया था। टीका यानी टीका का प्रवचन, यहां इस विश्व में द्रव्य एकत्व के कारणभूत, यानी द्रव्य ने छह द्रव्य एकत्व के कारणभूत द्रव्य सामान्य को छोड़े बिना ही, सभी द्रव्य सामान्य रूप से द्रव्य है ही, लेकिन अब उनके भेद करते हैं। वो भेद कैसे करेंगे, विशेष लक्षण के द्वारा भेद करेंगे, उसमें रहे हुए विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण सामान्य द्रव्य तो कहा, अब प्रत्येक द्रव्य का भिन्न भिन्न लक्षण है, उसे बतलाने हैं, उसे बतलाते हैं। विशेष लक्षणों के सद्भाव, विशेष लक्षण का सद्भाव, प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षणों का सद्भाव है कि जिस लक्षण से वह द्रव्य जानने में आता है। ये छह जाति अपेक्षा छह भेद बताए, तो भेद है यानी उसमें कुछ अपने अपने जुदे जुदे लक्षण होने ही चाहिए, नहीं तो सबको एक द्रव्य तो कहा ही था अगर सामान्य ही कहना था तो। परंतु उसमें कोई जीव है, कोई पुद्गल है, धर्म अधर्म आकाश काल है, तो हर एक के अपने अपने लक्षण जुदे हैं। अब कोई एक ऐसा लक्षण लिया कि चेतना वाला, तो उसमें दो ही भेद पड़े, जीव और अजीव, चेतन और अचेतन, तो अचेतन में पांच आ गए। ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं लगाएंगे। ऐसे और कोई अपेक्षा लगाएंगे आप? हाँ ताराबेन, जैसे अच्छा आप उमाबेन बताओ, जैसे आप ये छह द्रव्य में जीव और अजीव ऐसे भेद किए,
चेतन अचेतन,
चेतन अचेतन, जीव अजीव कहो, चेतन अचेतन कहो, ऐसे और कोई अपेक्षा लगाओ और द्रव्यों के भेद बताओ आप। हाँ नहीं नहीं नहीं, ज्ञान में तो हो गए ना वो। हाँ नहीं 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 नहीं, अरे मूर्त अमूर्त कहो ना, रूपी अरूपी, वहाँ एक पुद्गल अलग हो जाएगा रूपी में, और अरूपी में बाकी सब, अरूपी कहो अमूर्ति कहो, हाँ ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से बहुत सारे भेद हो गए।
जब आप कह रहे थे कि और कोई भेद है क्या, तो मुझे मनीषा की याद आई,
वो रूपी वो हमेशा अमूर्ति के रूपी में बहुत घोटाला करते थे,
रूपी में कभी वो समझ नहीं पाई थी, अब आ गए उसको सब।
ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से उसमें भेद करेंगे। वो अस्थिकाय आपने कहा, अस्थिकाय और सप्रदेशी अप्रदेश, नहीं नहीं नहीं, जीवों सारे द्रव्यों के भेद है। वो पंचास्थिकाय में लिया ना, पांच अस्थिकाय और एक है वो तो अप्रदेशी है, वो भेद हो गया उसके अंदर एक, वो बताएंगे अभी। हाँ ये लक्षणों के द्वारा उसमें भेद करेंगे। देखो प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षणों का सद्भाव है कि जिस लक्षण से वह द्रव्य जानने में आता है। हमने सामान्य विशेष गुणों में यह बताया था, सामान्य गुणों के द्वारा वो द्रव्य है ये ख्याल में आता है, विशेष गुणों के द्वारा वो कौन सा द्रव्य है पहचानने में आता है। एक द्रव्य को नक्की करता है और एक कौन सा द्रव्य है उसको नक्की करता है, यही बात यहां हो रही है। एक दूसरे से पृथक किए जाने पर विशेष लक्षणों की हयाती के कारण, एक दूसरे से भिन्न किए जाने पर, भिन्न करने ने एक को चिपके हुए और भिन्न करना ऐसे उसका अर्थ नहीं है, भिन्न जानना, भिन्न ही है सारे, परंतु लक्षण के द्वारा उनको भिन्न पहचानना है। जीवत्व रूप और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होता है। सामान्य द्रव्य जो कहा, अब द्रव्य के दो भेद किए, जीव और अजीव, जीव में एक आया और अजीव में पांच आए, ये सब आसान है ना इसलिए पढ़ लेते हैं हम। उसमें जीव का आत्मद्रव्य ही एक भेद है, जीव भले अनंत हो परंतु आत्मद्रव्य ही उसका एक प्रकार है, एक जाति है ना उसकी, एक प्रकार होगा। और अजीव के पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तथा आकाश द्रव्य, ये पांच भेद है। जीव का विशेष लक्षण पहले कहा था ना, विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण द्वारा दूसरे द्रव्य से पृथक यानी भिन्न करने से, द्रव्य रूप से एक है अर्थात सब द्रव्य 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 है, परंतु द्रव्य के भेद होते हैं वह उसके विशेष लक्षण द्वारा उन द्रव्य के भेद जानने में आते हैं। जीव का विशेष लक्षण चेतना उपयोगमयत्व, जीव का विशेष लक्षण चेतना नाम त्रिकाली स्वभाव, यही नहीं बात, एक परिणति और स्वभाव लिया, चेतना का अर्थ क्या लिया, त्रिकाली स्वभाव, चेतना त्रिकाली स्वभाव और उपयोग उसका परिणाम। खाली चेतना कहकर नहीं, वो स्वभाव कहकर नहीं, वो परिणाम ना भी है ना उसमें, तो वो उपयोग रूप है यानी पर्याय। आत्मद्रव्य का चेतना लक्षण है और यह चेतना चेतन का लक्षण है, चेतन द्रव्य का चेतना लक्षण है और चेतना गुण है और उसका परिणमन उपयोग रूपी परिणमन है। वह चेतन की उपयोग दशा है, दशा कहो, पर्याय कहो, परिणमन कहो, उपयोग दशा द्वारा चेतना और चेतना को धारण करने वाला चेतन द्रव्य का ज्ञान होता है। ये पर्याय के द्वारा वो चेतना है ऐसा ख्याल में आता है, और चेतना को धारण करने वाला चेतन द्रव्य का ज्ञान होता है। समझ में आती है क्या बात बताई यहाँ पर? पर्याय के द्वारा द्रव्य को पकड़ा है, उपयोग क्या है? दशा है, यानी जानने में आ रहा है ना, अभी अपने को पहचानना है। कैसे पहचानते थे? ये तो गोरा काला हुए ये तो पुद्गल की अवस्था है, पुद्गल का लक्षण है वो। तो ये अपना लक्षण क्या है? तो उपयोग दशा है। तो हमारे में जानना 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 करे कार्य चल रहा है, वो तो जीव का प्रकट लक्षण है। तो जानना 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 कार्य हो रहा है, ये कार्य हो रहा है, पर्याय हो रही है, तो वहाँ चेतना गुण होना चाहिए, और चेतना गुण का धारण करने वाला वही तो आत्मद्रव्य है। यानी वो पर्याय जो है, ज्ञान की एक पर्याय जीव द्रव्य को सिद्ध कर रही है। हाँ द्रव्य को बताते, द्रव्य को बताते हैं। हाँ हाँ, और हम क्या पर्याय मात्र को देखते हैं? देखना कहाँ है? वो पर्याय को पकड़कर देवर तक पहुँचना है। भले वो अशुद्ध भी परिणमन क्यों ना हो, वो तो प्रवचन सा तो उसी का सब कथन आ रहा है। पहले भी ये बात है, परिणाम और परिणामी वो तो भिन्न तो है ही नहीं, एक ही है। तो उस पर्याय का, पर्याय के द्वारा तो द्रव्य तक पहुंचना है, वो तो प्रयोजन हमारा सिद्ध हो जाता है। हम कहाँ रुकते हैं? बस पर्याय मात्र को देखते, ऐसा नहीं है। बिना द्रव्य के पर्याय आई कहाँ से? यानी कहना थोड़ी सूक्ष्म बात है, समझ में आया? कठिन तो है ही नहीं है, क्योंकि अभी इतना सारा हमने, और ये तो बिल्कुल सिंपल विषय, अभी और सिंपल हो रहा है, पहले से भी ज्यादा सिंपल हो गया आने से पहले लगता था। हम पहले से ही सोचते बहुत कठिन होगा, बहुत कठिन होगा, है ना? पांच अजीव द्रव्य से जीव द्रव्य भिन्न है, भिन्न का लक्षण क्या? द्रव्य लक्षण भेद से भिन्न है ना, तो उसका लक्षण चेतना है। चेतन द्रव्य का चेतना लक्षण है। लौकिक में तो लक्षण से बराबर हम पहचानते हैं, कुछ जलने की बुआ थे, अरे गैस चालू है ऐसा और कुछ अन्य अन्य चीजें देखते ना, कुछ स्वादिष्ट कुछ बना है, फ्रेंड के यहाँ गए कुछ खाया, तो उसमें क्या क्या डाला, बराबर वो लक्षण के द्वारा पहचान लेते हैं उसमें क्या क्या है। इलायची डाली है कि केसर डाला है कि और क्या डाला है, वो कैसे पहचानते हैं झट से? तो यहाँ पर भी लक्षण के द्वारा पहचानना है। तो जीव का लक्षण क्या है? तो उसका लक्षण चेतना है, चेतन द्रव्य का चेतना लक्षण है। इस चेतना से यह चेतन द्रव्य है ऐसा जानने में आता है। परंतु यह चेतना किस में जानने में आती है? देखो एक स्टेप बाय स्टेप कह रहे, चेतन द्रव्य है, चेतना उसका लक्षण है, यानी चेतना के द्वारा चेतन द्रव्य जानने में आएगा। पर चेतना कैसे जाने की जाएगी ये पूछ रहे, ये तो स्वभाव है ना, स्वभाव तो अव्यक्त होता है, तो व्यक्त तो पर्याय होती है। तो कहते हैं चेतना किस में जानने में आती है? तो कहते हैं कि चेतना के उपयोग में जानने में आता है। गुण तो है, चेतना गुण है, पर वो जानने में कैसे आएंगे? तो पर्याय में, पर्याय में जानने का कार्य हो रहा है, वो गुण में जो शक्ति है वो पर्याय में वो व्यक्त हो रही है। तो व्यक्त के द्वारा हमको अव्यक्त का ज्ञान हो जाता है, पर्याय ही व्यक्त है। परंतु इस चेतना का चेतना गुण है और उसके उपयोग में जानने में आता है। उपयोग यानी जानना देखना, जो उपयोग है उसके द्वारा चेतना और चेतन का ज्ञान होता है, ऐसी बात है। जो कितना सरल करके बता रहे, द्रव्य को किस लक्षण से जानने में आता है?
जीव द्रव्य,
जीव द्रव्य को किस लक्षण से जानने में आता है? जीव द्रव्य लक्ष्य है तो उसका लक्षण क्या? दूसरे द्रव्य से उसका लक्षण भिन्न हो तो भिन्न रहता है ना। तो भगवान चेतन द्रव्य है, उसका चेतना गुण है, यह लक्षण है, यह ध्रुव लक्षण है। परंतु इस लक्षण को और द्रव्य को जानने वाला चेतन का परिणमन है। लक्षण को भी जानने वाला और द्रव्य को भी जानने वाला कौन है? उसका चेतना का जो परिणमन है, चेतन का परिणमन, रागादि नहीं, चेतन का परिणमन यानी उपयोग। इस उपयोग से चेतना लक्षण और द्रव्य लक्ष्य इस उपयोग में जानने में आता है, ऐसी बात। मुमुक्षु के तत्वार सूत्र में एक उपयोग ही आता है, क्या आता है वहां पर? उपयोगो लक्षणम। और छोड़ाला में क्या आता है? चेतन को है उपयोग रूप, है ना, कहीं पर ऐसा ही है। तो तत्वार सूत्र, गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, तत्वार सूत्र में उपयोग के भेद किए हैं। उपयोग के भेद करके जीव तत्व को अशुद्ध चेतना में भी गिनने में आया है। यहाँ भी जैसेनाचार्य देव की टीका में लिया है, भाई टीका में लिया है, शुद्धोपयोगेन व्यवहारेण पुनः मति ज्ञानादि अशुद्ध उपयोगेन लिया है। निश्चयेन परम शुद्ध चेतनया व्यवहारेण पुनः अशुद्ध चेतनया, संस्कृत टीका में है, वहां भी ऐसा लिया है। आत्मतत्व, शुद्ध अशुद्ध चेतना वाला आत्मतत्व, उसके भेद किए। अकेली शुद्ध चेतना कहे तो नहीं समझे, तत्वार्थ सूत्र में ऐसा लिया है। राग द्वेष अशुद्ध चेतना भी उसमें है और शुद्ध चेतना यानी निर्मल परिणमन भी उसमें है। तो निर्मल परिणमन द्वारा चेतना और चेतन का ज्ञान हुआ और साथ में अशुद्ध परिणमन है उसका भी चेतना उपयोग में ज्ञान हुआ। ये चेतना उपयोग में किस किस को जाना? चेतना को जाना, चेतन को जाना, और जो साथ में अशुद्ध परिणमन है उसको भी जाना, यानी राग को भी जाना। हो गया समय, यही रुकेंगे भी आज। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो रो। सुशील अभी